रुक जाओ विक्रम। शमशान घाट पर अखिल प्रताप ने विक्रम प्रताप को रोक दिया। विक्रम प्रताप की आवाज सुनकर इस शमशान की शांति भरे माहौल में हल्की हल्की सुगबुगाहट की आवाज होने लगी थी। मन ही मन जिस सवाल का सबको इंतजार था वो अखिल प्रताप के रूप में जवाब के साथ मौजूद था। रास्ते भर रोते रहने और जबरदस्ती अपने आंसुओं को पोंछने के कारण अखिल प्रताप की आंखें बिल्कुल लाल हुई थीं। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए विक्रम प्रताप के पास से बढ़ने लगे थे। शत्रुपा देवी ने जब अखिल प्रताप को देखा तो पहले तो वो सदमे के कारण कुछ बोल नहीं सकी थी, लेकिन तुरंत ही गुस्से में उनके चेहरे की नस फड़क उठी थी। गोरा रंग बिना चिता की अग्नि प्रज्वलित किए ही गुस्से से दहक कर लाल हो गया था। इधर विक्रम प्रताप ने भी जब अपने भाईसा को देखा तो तुरंत अपने हाथ में ली हुई लकड़ी पास खड़े हुए पंडित को थमाई और दौड़कर अखिल प्रताप से जाकर लिपट गए। भाईसा, आप कहाँ थे? भाईसा भाईसा, देखिए ना क्या हो गया। बाबासा और मासा हम लोगों को छोड़कर चले गए, हम अकेले हो गए भाईसा। शत्रुपा देवी के कठोर रूप में समझाने के कारण जिन आंसुओं को विक्रम प्रताप ने अब तक रोक रखा था अपने बड़े भाई को देखकर और उनका सहारा पाते ही बह बाहर निकले थे। हम अकेले नहीं हैं विक्रम, हम दो भाई हैं और दो लोग कभी अकेले नहीं कहे जाते, अखिल प्रताप ने धीरे से विक्रम को समझाया। विक्रम प्रताप फूट फूट कर रोने लगे थे। रोना तो अखिल प्रताप को भी आ रहा था, लेकिन अपने छोटे भाई की हालत देखकर बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला। विक्रम अभी उनके सीने के नीचे तक ही आते थे। अपनी दोनों भुजाओं में अपने भाई को समेटते हुए उन्होंने उनके सर पर अपने होंठ रख दिए। लेकिन अब शत्रुपा देवी से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो तेजी से आगे बढ़कर आईं और उन्होंने विक्रम का हाथ पकड़कर खींच लिया। ये वक्त रोने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर अपने कर्तव्य को पूरा करके अपने अधिकार को अपने हाथ में लेने का है विक्रम प्रताप। उन्होंने जल्दी सुलगती हुई नज़र अखिल प्रताप के ऊपर डाली। वरना इस समय बहुत लोग ऐसे आपके साथ हैं, आपके आगे पीछे खड़े हैं, जो कि बस एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप वो अवसर अपनी नादानी या कमजोरी में उन्हें दें और वो आपके अधिकार पर अपना कब्जा जमा बैठें। इतना कहकर उन्होंने विक्रम का हाथ खींचते हुए उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी अखिल प्रताप की कड़कती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी। किस अधिकार और कर्तव्य की बात कर रही हैं बड़ी मासा? कौन छीनने वाला है हमारे भाई का अधिकार? अखिल प्रताप पूरी दृढ़ता के साथ वहीं खड़े थे। इस अवसर पर हम गैरों से बात नहीं करना चाहते। समर्थ, इसे कहिए कि यहां से चला जाए। शत्रुपा देवी ने बिना अखिल प्रताप की तरफ देखे हुए अपना फरमान सुनाया। अपनी बुआ सा के आदेश सुनकर समर्थ सिंह अखिल प्रताप की तरफ बढ़े थे, लेकिन अखिल प्रताप ने हाथ ऊपर करके उन्हें वहीं पर रोक दिया। वहीं रुक जाइए काकुसा। आज अखिल प्रताप के शब्दों में वो दृढ़ता थी जो कि कभी अभिमन्यु प्रताप के शब्दों में हुआ करती थी, क्योंकि आज उन्हें न किसी का डर था, न किसी का भय और न किसी की चिंता, जो उन्हें हमेशा लगी रहती थी कि उनके एक कदम से कहीं उनके पिता का वैवाहिक जीवन खतरे में ना पड़ जाए, कहीं उनके जीवन से सुख शांति ना चली जाए, वो आज खत्म हो चुका था। तो फिर बचा ही क्या था जिसे कि वो डरते? गैर किसको कहा बड़ी मासा, हम गैर नहीं हैं। और रही बात कर्तव्य और अधिकार की, तो अधिकार से पहले कर्तव्य आते हैं और ये अपने पूरे करते हैं, गैर नहीं। बाबा सा ने खुद हमसे ये कहा था कि अपने कर्तव्यों से कभी भागना मत और कभी अपने अधिकारों को लेने से पीछे हटाना मत। हम अपने वही कर्तव्य पूरा करने यहाँ आए हैं और इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। तेजी से चलते हुए अखिल प्रताप शत्रुपा देवी से भी चार कदम आगे निकले और उन्होंने पंडित जी के हाथों से लकड़ी ले ली। अपने बाबा सा को मुखाग्नि देने का प्रथम कर्तव्य और प्रथम अधिकार हमारा है। पंडित तो जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने तुरंत अखिल प्रताप के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। अब तो शत्रुपा देवी के गुस्से से पागलों की तरह विक्रम को वहीं पर छोड़कर अखिल प्रताप की तरफ लपकी। नहीं आपका कोई अधिकार, कोई नहीं, आप हमारे बेटे के। आपके कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा बड़ी मासा, बाबा सा हमारे पिता थे, ये बात सारी दुनिया जानती है और उन्होंने स्वयं अपनी चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती। आओ विक्रम। शत्रुपा देवी को जवाब देकर उन्होंने विक्रम के लिए अपना हाथ बढ़ाया। विक्रम धीरे से उनके पास आए। इधर शत्रुपा देवी दौड़कर उनके पीछे जाती। उसके पहले ही समर्थ सिंह ने उन्हें पीछे से अपने बाहों में पकड़ लिया था। कुछ देर पहले उनकी इसी विषय में वकील से बात हो रही थी और वकील ने उन्हें ऐसा कुछ बताया था कि अब उन्हें ये सब चीज़ों से ज़्यादा आने वाले वक्त की चिंता परेशान कर रही थी। बहुत कुछ यादों के भंवर में ऐसा था जो पूरे रास्ते अखिल प्रताप को मथ रहा था और वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन इधर शत्रुपा देवी भी अस्पताल से निकलकर पैलेस के दरवाजे तक पहुँच चुकी थी। उनका दिल नॉर्मल स्पीड से भी ज़्यादा धड़क रहा था। क्या वैशाली को बुंदेला पैलेस के अंदर इस बार एंट्री मिल सकेगी? इंतज़ार सदियों का, वो भूली दास्ता जो आज फिर चौखट पर आकर खड़ी हो गई है किसी की यादों का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। क्या खुल सकेगा उसके लिए दरवाज़ा? क्या उसका इंतज़ार पूरा हो सकेगा?